आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी से देशवासियों को देंगे करीब 61 अरब की परियोजनाओं की सौगात। प्रधानमंत्री ने कल कर्मयोगी सप्ताह का किया शुभारंभ, कहा वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने में इससे होने वाले सुधारों से मिलेगी सहायता। प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की नामांकन प्रक्रिया जारी, 13 नवंबर को होगा मतदान। और देश के विभिन्न हिस्सों में आज मनाया जा रहा है करवा चौथ। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आएंगे। वे वाराणसी में देश की करीब 61 अरब रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री इस दौरान एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे के दौरान आरजे शंकर आई हॉस्पिटल और सिगरा स्टेडियम समेत 380 करोड़ से ज्यादा की लागत की 14 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वो करीब 2874 करोड़ रुपए की कई अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, धर्म, पर्यटन, रोजगार, आवास और विमानन जैसी कई सुविधाएं जनता को समर्पित करेंगे। वो वाराणसी हवाई अड्डे के विस्तार और नए टर्मिनल भवन की आधारशिला भी रखेंगे। दोपहर बाद वो सिगरा स्पोर्ट्स स्टेडियम में 20,000 से ज्यादा लोगों की सभा को भी संबोधित करने वाले हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
प्रधानमंत्री की सुरक्षा के समुचित प्रबंध किए गए हैं। वाराणसी के पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री के प्रत्येक मार्ग पर ड्रोन से निगरानी की व्यवस्था की गई है।
कई लेयर की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है। एसपीजी के जवान तैनात रहेंगे, पुलिस का घेरा रहेगा जिसमें 50 आईपीएस अफसर यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। करीब 8,000 से 9,000 के आसपास पुलिसकर्मी इसमें तैनात रहेंगे, एटीएस के कमांडोज तैनात रहेंगे। ड्रोन कैमरा और सीसीटीवी के माध्यम से हम लोग चप्पे चप्पे की निगरानी करेंगे। डायवर्जन भी इस प्रकार से ट्रैफिक के किए गए हैं कि आम नागरिकों को किसी भी तरह की असुविधा न हो।
प्रधानमंत्री वाराणसी से ही वर्चुअल माध्यम से कई अन्य परियोजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इनमें आगरा हवाई अड्डे पर 570 करोड़ रुपए से अधिक के नए सिविल एनक्लेव का शिलान्यास, दरभंगा हवाई अड्डे पर लगभग 910 करोड़ रुपए और बागडोगरा हवाई अड्डे पर करीब 1,550 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। श्री मोदी 220 करोड़ रुपए से अधिक से बनाए गए रीवा हवाई अड्डे, मां महामाया हवाई अड्डे, अंबिकापुर और सरसावा हवाई अड्डे के नए भवन टर्मिनलों का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र से कर्मयोगी सप्ताह राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मिशन कर्मयोगी के जरिए ऐसे मानव संसाधन सृजित करना है जो हमारे देश के विकास की प्रेरक शक्ति बन सकें। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह के दौरान नए शिक्षण और अनुभवों से प्राप्त शक्ति से कार्य प्रणाली में सुधार आएगा और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
प्रधानमंत्री ने पिछले 10 वर्षों में सरकार की मानसिकता में बदलाव लाने के लिए उपायों की भी चर्चा की, जिनका प्रभाव लोग आज महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार में काम कर रहे लोगों के प्रयासों और मिशन कर्मयोगी जैसे कदमों से ये संभव हो पाया है। श्री मोदी ने सुझाव दिया कि लोक सेवकों को नवीनतम प्रौद्योगिकी की जानकारी रखनी चाहिए ताकि नए मानदंड हासिल किया जा सके। उन्होंने कहा कि मिशन कर्मयोगी इस दिशा में सहायक साबित हो रहा है। प्रधानमंत्री ने IGOT प्लेटफॉर्म की भी सराहना की और कहा कि 40 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी इस प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत हैं। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार।
कर्मयोगी राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह के दौरान प्रत्येक कर्मयोगी कम से कम 4 घंटे की शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध होगा। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से भी मिशन कर्मयोगी की महत्ता के बारे में देशवासियों को जानकारी दी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्राविधिक शिक्षा अध्यापन सेवा परीक्षा 2021 में धांधली की आशंका को लेकर लोक सेवा आयोग के उप सचिव ने 2 लोगों के विरुद्ध केस दर्ज कराया है। ये मामला भदोही के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी के निदेशक की सूचना पर दर्ज हुआ है। परीक्षा को प्रभावित करने से संबंधित वॉइस क्लिप मिलने पर आईआईसीटी के निदेशक ने मामले की शिकायत आयोग से की थी। इसके साथ ही आज से प्रस्तावित इस परीक्षा को आयोग ने स्थगित भी कर दिया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है। मिर्जापुर के 397 मचवा विधानसभा उप निर्वाचन के लिए कल 10 लोगों ने नामांकन पत्र खरीदा। मचवा सीट के लिए कल तक कुल 22 नामांकन पत्र खरीदे गए हैं। बहुजन समाज पार्टी ने कल प्रदेश की करहल विधानसभा सीट के लिए अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। बसपा ने इस सीट से अवनीश कुमार शाक्य को उम्मीदवार बनाया है। इस सीट पर समाजवादी पार्टी तेज प्रताप यादव को पहले ही अपना प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। इसके साथ ही सपा ने अब तक कुल 6 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। वहीं भाजपा ने अभी तक उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामों की घोषणा नहीं की है। इन सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होगा। उपचुनाव को लेकर कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री आवास पर एक अहम बैठक की।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक में टीम 30 को उपचुनाव में सभी 9 सीटें जीतने का टारगेट दिया। बैठक में सभी 9 सीटों को जीतने के प्लान पर रणनीति तैयार की गई। बैठक में जिन जिन जिलों में चुनाव होने हैं वहां के प्रभारी मंत्रियों, जिला अध्यक्ष, संगठन के पदाधिकारियों के साथ एक एक बूथ को मजबूत करने पर मंथन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी प्रभारी मंत्री संगठन के साथ सामंजस्य बनाकर अपने अपने क्षेत्रों में मजबूती से कार्य करें। उपचुनाव को लेकर पार्टी अपने प्रत्याशियों के नामों को जल्द ही अंतिम रूप देने वाली है। वहीं पार्टी ने उपचुनाव में RLD को एक सीट दी है। उधर समाजवादी पार्टी ने भी चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। सपा प्रदेश अध्यक्ष ने संशोधित मतदाता सूची उपलब्ध कराने के लिए राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन दिया है। समाचार कक्ष से आकाशवाणी समाचार के लिए शैलेंद्र शर्मा।
मथुरा जिले के फरक क्षेत्र के परखम स्थित दीनदयाल गौ विज्ञान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारिणी मंडल की 10 दिवसीय बैठक आज से शुरू होगी। इस मौके पर संघ के सरसंघ चालक डॉ मोहन राव भागवत सहित करीब 3000 पदाधिकारी संघ के गणवेश में योग करेंगे। इसके बाद अन्य कार्यक्रमों के आयोजन किए जाएंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ मोहन राव भागवत और सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले बैठक में हिस्सा लेने के लिए कल शाम को ही मथुरा पहुंच गए हैं। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहला दीपोत्सव 28 से 30 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। इससे पहले वहां 7 दीपोत्सव कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं और उन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज कराया गया है। अयोध्या के मंडलायुक्त गौरव दयाल ने बताया कि इस बार दीपोत्सव कार्यक्रम के दौरान प्रभु श्रीराम के जीवन पर आधारित 18 प्रसंगों की झांकियां विशेष आकर्षण का केन्द्र बनेंगी। आज देश के विभिन्न हिस्सों में करवा चौथ का पर्व मनाया जा रहा है। इस दिन सुहागिन औरतें निर्जला व्रत रखकर पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। व्रत के दौरान महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन अर्चन करती हैं। चांद निकलने के बाद पारंपरिक तरीके से पूजा पाठ कर महिलाएं जल ग्रहण करती हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान सहित 6 आरोपियों पर गवाह को धमकाने के मामले में रामपुर की जिला अदालत में कल आरोप तय किए गए। अब 24 अक्टूबर को मामले की सुनवाई होगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी से देशवासियों को देंगे करीब 61 अरब की परियोजनाओं की सौगात। प्रधानमंत्री ने कल कर्मयोगी सप्ताह का किया शुभारंभ। कहा वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने में इससे होने वाले सुधारों से मिलेगी सहायता। प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की नामांकन प्रक्रिया जारी। 13 नवंबर को होगा मतदान और देश के विभिन्न हिस्सों में आज मनाया जा रहा है करवा चौथ। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।